ஹலோ, யூ ஆர் லிஸ்னிங் ரேடியோ மாடிடம்பஸ் இந்தியா.
हेलो एवरीवन, हम हैं आपके दोस्त रेडियो ओपीजेएस, आजादी बोलने की.
आपका दोस्त डॉक्टर कर्म प्रताप सिंह, मैं फिर आप लोगों के साथ में हूँ शॉर्ट स्टोरीज इस कार्यक्रम में. एक आज हिंदी की कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए. और आज हमारी कहानी का शीर्षक है डाकी और लड़की. एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने कहा, चिट्ठी ले लीजिए. आवाज सुनते से ही अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो. लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत सी जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता. लड़की ने फिर आवाज़ लगाई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी. बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए. तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला. डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था और वो उसने सोचा कि कोई आएगा तो मैं ढंग से हड़काऊंगा. अब उस लड़की को वो चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसने दरवाजा खुलते से वो एकदम चौंक गया. उसकी आंखें खुली की खुली रह गई. उसका सारा गुस्सा पलमर में फुर्र हो गया. उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या जिसकी एक पैर नहीं था खड़ी थी. लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी. डाकिया चुपचाप डाक देकर उसके हस्ताक्षर लेके वहां से चला गया. वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी. उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे. उस लड़की की देखभाल के लिए एक कामकाजी बाई सुबह शाम अपने साथ घर में रहती थी और परिस्थितिवश वो उस दिन नहीं आई थी. समय निकलता चला गया. महीने दो महीने में जब कभी उस लड़की की कोई चिट्ठी आती तो डाकी आवाज़ देता और वो आराम से वहाँ खड़ा रहता. वो इंतज़ार करता कि जब वो लड़की आएगी तो मैं उसकी चिट्ठी में जो है उसको मैं दे दूंगा. धीरे धीरे दिन बीतते चले गए. उन दोनों में थोड़ा सा मेलजोल भी बढ़ गया, भावनात्मक संबंध भी बढ़ गया, एक दूसरे से लगाव भी हो गया. एक दिन उस लड़की ने गौर से देखा कि डाकिया की तरफ के पैरों में जूते नहीं हैं. वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था. बरसात का मौसम था. फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने वहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के नीचे निशान बने हुए थे उन पर कागज रखकर उस पाँव का चित्र उतार लिया. अगले दिन जब अपने यहाँ काम करने वाली बाई आई तो उसने जूते का नाप वो अपनी बाई को कहा कि ये ले जाओ, इस पर एक इस नाप के एक जूते ले आना. लेकिन छोटी लड़की ने सोचा कि मैं भाई अपना जो है कैसे उन्हें दूँ अपना गिफ्ट. लेकिन वो छोटी लड़की यही सब सोचती रही. लेकिन उस छोटी लड़की ने सोचा कि मैं दे दूँगी. चलो, डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्यौहार में मैं छोटी बच्ची को क्या गिफ्ट दूँ, वो तो मेरे से अच्छे. चलो मैं उसके लिए कोई चॉकलेट वॉकलेट लेकर मैं उसके लिए जाऊँगा. अभी डाकिया भी सोच रहा था कि वो लड़की जो है उससे मेरे को लगाव हो गया, दिवाली आने वाली है, मैं उसको कुछ गिफ्ट करूँगा. और वो लड़की ने भी सोचा कि ये जो मैंने जूते खरीदे हैं, दिवाली आ रही है तो मैं जो है अपने ये डाकिया चाचा को मैं ये जूते गिफ्ट करूँगी. उसके बाद लड़की का एक दिन फिर लड़की की चिट्ठी फिर आई तो डाकिया फिर आया. उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो अंदर से आवाज आई, मैं हूँ गुड़िया। गुड़ तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिया ने एक चॉकलेट जो थी उसने तो वो चॉकलेट जो है डाकिया ने भी लेकर आया गिफ्ट, उसने वो चॉकलेट जो है लड़की को दे दी। ये लो बेटी, ये अपने गरीब चाचा की तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली का गिफ्ट है, ठीक है। तो अब लड़की को तो चाचा ने दे दिया गिफ्ट, लड़की को भी ध्यान आया कि उसने भी जो है एक गिफ्ट लाके रखा हुआ है अपने चाचा को देने के लिए। वो लड़की भी बोली आप एक मिनट रुको। फिर वो लड़की अंदर गई, वो लड़की भी फिर वो गिफ्ट उठा के लेके आई डब्बा, और उसने वो डब्बा जो है वो डाकिया चाचा को दे दिया। उसने कहा ये तो डाकिया वो इतना बड़ा डब्बा देख के वो आश्चर्य में पड़ा, भाई ये क्या चीज़ दे रही है। डाकिया देख के डाकिया भी सोचा यार आश्चर्य हो रहा, उसको मालूम नहीं यार क्या दे रही है और क्यों दे रही है। उसने कहा कि भाई तुम मेरी बेटी के समान हो और मैं छोटे बच्चों से कैसे गिफ्ट ले लूं। तो लड़की ने कहा कि यार चाचा तुमको तो मेरा गिफ्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी, ठीक है। कहते हुए बूढ़े डाकिया ने पैकेट लिया और उस बड़े प्रेम से जो है लड़की के सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और वो चल दिया। बाकी लड़की ने कहा कि ऐसा है चाचा मेरा जो गिफ्ट है वो घर जाके खोलना। घर जाके जब डाकिया ने पैकेट खोला तो आश्चर्यजनक रह गया कि क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडब आई। डाकियों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी बेटी जो लड़की जो है वो उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है, इतनी केयरिंग हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि कृपया करके मेरा तबादला दूसरे इलाके में कर दिया जाए। तो पोस्टमास्टर ने कहा भाई ऐसा क्यों है। पोस्टमास्टर ने जब बड़ा कई बार पूछा तो उसने सारी कहानी पोस्टमास्टर को सुनाई। उसने वो जूते निकाल के जूते वो दिखाए जो वो पहने हुए था और उसने कहा कि साहब उसने छोटी सी लड़की इतनी केयरिंग थी, दूसरे की चिंता करने वाली थी और दूसरे के लिए वो सेंसिटिव भी थी, तो उसने जो है मेरे नंगे पैर देखे यार, ये मेरी ये चूटी कभी मैं टूटी चप्पल पहनता था कभी ऐसी नंगे पैर चले जाता तो उसने मेरे को ये अच्छे से जूते दिए। अब छोटी सी अपाइज लड़की ने मेरे को नंगे पैर और कभी ये टूटी चप्पल देख के जो है मुझे जूते दे दिए, लेकिन उसके तो पैर नहीं है, मैं उसको पैर कहाँ से ला के दूँ। तो ये कहानी जो है बहुत छोटी सी है और ये कह के डाकिया जो है वो फूट फूट के रोने लगा। वो अपनी बेबसी पर रो रहा था कि वो चाहता तो है करना लेकिन कर नहीं पा रहा। तो कहानी का मोटो ये है कि कम से कम हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमारे आसपास हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके प्रति हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसकी कोई चिंता करे, उससे कोई प्रेम करे, उसके सुख में दुख में साथ निभाए, सभी चाहते ये सभी लोग हैं। लेकिन हमको भी दूसरों के लिए वैसा सोचना चाहिए, तभी दूसरे लोग हमारे को सोच पाएंगे। तो हमको केयरिंग होना चाहिए। ज़िंदगी और कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें में दिखावे से ज़िंदगी को दूर रखना चाहिए, ज़िंदगी को केयरिंग में रखना चाहिए। भाई हम किसी की केयर कर सकते हैं तो करनी चाहिए, किसी की चिंता कर सकते हैं तो करनी चाहिए, किसी से प्रेम कर सकते हैं तो करना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए तो किसी की मदद भी करनी चाहिए, किसी की चिंता भी करनी चाहिए, अगर हम प्रेम कर सकते हैं तो प्रेम भी करना चाहिए। तो यही ज़िंदगी का सार है, वरना के पत्थरों की ज़िंदगी हो। हमें किसी सेंसिटिव होना चाहिए इंसान को कि सामने वाला को अगर कहीं तकलीफ है, और केवल इंसानों के प्रति नहीं जानवरों के प्रति भी, कि आपने उठाया पत्थर और एक कुत्ते को उठा के मार दिया तो और उस कुत्ते को दर्द हो रही है तो आप हंस रहे हैं, आप उसके दर्द के प्रति सेंसिटिव ही नहीं है। तो जीवन जो है बड़ा कीमती है और हमको इस हिसाब से सोचना चाहिए कि हम दूसरों की केयर करें, दूसरों की चिंता करें। जब हम दूसरों की चिंता करते हैं तो हमारी चिंता करने वाले भी बहुत सारे लोग इकट्ठे मिल जाते हैं हमको। तो आज की छोटी सी कहानी थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसका पर्पस भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम और कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे और उसका कुछ मोटो भी बताते रहेंगे कि ज़िंदगी जो है, हमारा लक्ष्य है कि दुनिया जो है रहने के लिए और बेहतर से बेहतर हो, हमारे आसपास का माहौल और बेहतर से बेहतर हो, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके अंदर में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाए। इसी भाव के साथ में आज की कहानी को मैं यहीं विराम करता हूँ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे शॉर्ट स्टोरीज में। आज हिंदी की कहानी थी, फिर कभी इंग्लिश में भी सुनाऊंगा मैं। अच्छा, नमस्कार, फिर मिलेंगे। डॉक्टर कर्ण प्रताप सिंह को अब इजाज़त दीजिए।